ओम शांति। मीठे बाबा ने हम सभी को ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। ऐसा है, हम क्या से क्या बन जाते हैं? मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। आज की दुनिया में जब देखो, चारों तरफ पूरे विश्व में देखो, खाली भारत की बात नहीं है, इवन अमेरिका में देखो, यूके में देखो, किसी भी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसे कहते हैं, आज हम विकसित देश कहते हैं, वहां पर भी हर मनुष्य, लगभग हर मनुष्य या तो मानसिक रोगों से परेशान है या तो शरीर के रोगों से परेशान। मन के रोग कैसे? जल्दीबाजी, चिंता सभी को है, सभी को चिंता है, जल्दीबाजी सभी को है, गुस्सा सभी को आता है, उदास सभी होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात फील कर लेते हैं, अपने मन का बोझा, अपने मन की बातें शेयर नहीं करते तो मन में बहुत बोझा हो जाता है। ये बातें आज सभी के अंदर हैं, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, विदेशों में और ज्यादा है। और साथ साथ तन की बीमारियां, ब्लड प्रेशर 100 में से 30 लोगों को है, डायबिटीज 100 में से 15 लोगों को है, हार्ट की बीमारी 100 में से 15 लोगों को है, मोटापा 100 में से 40 लोगों को है। और देखो, कोई ऐसा कहा जाता है, ऐसे एक अभी सर्वे हुआ था तो पाया गया, फिजिकल बीमारियां मतलब तन की बीमारियां में 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। कितनी बीमारियां हैं? 100 लोगों को 200 बीमारियां। तो कितनी हो गई, एवरेज कितनी हो गई एक आदमी को? 2 बीमारी हर एक को हो गई ना। तो मन के रोग सबके अंदर, मन के 5-5 रोग सबके अंदर, 5 रोग तो कम से कम है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर उनके बाल बच्चे बहुत सारे हैं, तो वो सबके अंदर, और तन के रोग भी 2 एवरेज सबके अंदर। अगर आपने आपको भी देखेंगे ना आज आप, तो 2 तो मिल ही जाएंगे ढूंढने से। तो बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं, और ऐसी हालत में शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लेके हमको वो ज्ञान दिया है जिससे हम अभी क्या बना देंगे, कलयुग को स्वर्ग बना देंगे, रोगी निरोगी बन जाएंगे। सत्युग में कोई बीमार नहीं होता है। कितने समय बाद, कितने और समय, और 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, है ना, फिर क्या होगा? सत्युग शुरू होगा और उसमें कैसा होगा? कोई भी रोगी नहीं होगा। तो कैसे हम राजयोग से सदा के लिए आत्मा को शक्तिशाली, मन को खुश, सदा खुश, और तन को सदा स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, मैं इस पे आपको पहले एक सैंपल प्रस्तुत करता हूं, एक सैंपल आपके सामने रखता हूं। बाबा कहते हैं ना, पहले सैंपल दिखाओ तब माल को सामने रखो, है ना, तब अपना सामान आप आगे दो, है ना। तो मैं आपके सामने एक सैंपल रखता हूं। एक ज्ञान सिंह भाई करनाल के हैं, वो कैसे उन्होंने अपना जीवन बदला बाबा के राजयोग से, ये दिल वालों के प्रोग्राम से, कैट प्रोग्राम से, तो आपको थोड़ा सा अपना संक्षिप्त में 5 मिनट में अपना अनुभव सुनाएंगे, उसके बाद मैं आपके सामने रखता हूं कैसे अपना आप फिर उसके समझ के कि कैसे एक व्यक्ति अपना जीवन बदल सकता है, कैसे हम वारिस बन सकते हैं, फिर आप उससे उनसे फिर मैं आपको आगे इसकी कैसे बन सकते हैं विधि मैं आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए सैंपल क्या है।
ओम शांति। शरीर का नाम ज्ञान सिंह, मैं करनाल हरियाणा से आया। काम मेरा खेती बाड़ी का, तो मैं किसान के घर में जन्म लिया और बचपन से ही फिर मेरे को संघ के कारण बहुत सी बुराइयां लग गई। स्कूल में पढ़ते पढ़ते बीड़ी सिगरेट शुरू कर दिया, जो बड़ा हुआ शराब, फिर उसके बाद जितना बड़ा हुआ तो अफीम, ये वो सब नशे हो गए मेरे अंदर, ताश, जुआ, लड़ाई झगड़ा, सब बुराइयां आ गई। और ये था कि भाई मेरे को 2003 में हार्ट अटैक हुआ, जुलाई 20 तारीख को, तो मैं करनाल में दाखिल हुआ डॉक्टर जेके बुटानी के हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मेरे को उसमें दिल्ली जयपुर गोल्डन में भेज दिया। तो मेरे को उन्होंने एंजियोग्राफी करके देखा तो 5 ब्लॉकेज निकली, एक 99% थी जिसमें स्टूडेंट डाल दिया, बाकी 50% 55% 75%। तो उन्होंने जब इलाज किया तो मैं घर आ रहा था, तो सब उन्होंने परहेज बता के बीड़ी सिगरेट अफीम ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मैं छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। जैसे खेत में जाता था तो मैं मोटरसाइकिल ट्रैक्टर के बिना चल भी नहीं सकता था, और मेरे नौ भी बिल्कुल काले हो गए थे कि चल भी नहीं पा रहा था। और फिर मेरे को एक भाई ने बताया, सुरजीत भाई ने, कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में राजयोग के द्वारा आर्टरी खुलती है। तो हमारे गांव का ही था, हम तो सवेरे दिन में भी शराब पी लेते थे। वो कहा कि भाई आपने अपने बच्चों से प्यार नहीं है। मगर प्यार है जब भी, तो हम भाई पैसा कमाते हैं इनके लिए, लड़ाई झगड़ा सभी इनके लिए तो करते हैं। तो कहने लगे नहीं भाई आपने सही में प्यार नहीं है, सही में प्यार है तो मेरे साथ गरुंडा आश्रम पे चलो। तो मैं गरुंडा आश्रम पे चला गया, तो वहां प्रेम बहन जी थे, उन्होंने मेरे कागज मंगाए, कहा कि वहां पर डॉक्टर सतीश गुप्ता जी कैट प्रोग्राम चलाते हैं, हम आपके कागज भेज देंगे। तो उन्होंने जुलाई 2004 में मेरे कागज यहां भेज दिए। तो फिर मैं भी राजयोग शिविर में आया था, तो डॉक्टर साहब से मिला, तो इन्होंने कहा कि अगस्त में, अगस्त 16 अगस्त 24 अगस्त तक प्रोग्राम चलेगा, तो उसमें आप आ जाना। जब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं ना चल सकता था ना कुछ, जैसे प्रोग्राम में आए तो पहले दिन सैर कराते हैं, तो मेरे से एक चक्कर भी नहीं लगा था पार्क में। तो जैसे डॉक्टर साहब का हमने प्रोग्राम फॉलो किया, तो उसमें बाला बहन डॉक्टर गुप्ता जी और राजू भाई और सूर्य भाई थे, तो जैसे कमेंट्री से क्लास करा रहे थे, ऑपरेशन कराया तो मैं बाबा ने सूक्ष्म वतन में खींच लिया। तो हमारे युगल भी साथ में ही थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा ऐसे भी कोई आर्टरी खुलती है? तो बाबा ने कहा ऐसे हाथ करके निकाला कि दो नाली दिखाई उनको। तो बाबा ने कहा कि उन्होंने कहा हमारे युगल ने कि ये तो बाबा नहीं खुली। तो दोबारा से फिर ऐसे दो नाली दिखाई बाबा ने हमारे युगल को सूक्ष्म वतन में। उधर मेरे को ऑपरेशन के समय में दिल में ऐसा लग रहा था कि मेरी आर्टरी खुल रही है, उधर हमारे युगल को ये अनुभव हो रहा था कि भाई कैसे खुलती हैं। तो बाबा ने ऐसे दिखाया तो वो दोनों नाली बिल्कुल साफ थी। तो कहने लगे भाई कि हाँ अब मान गई मैं, अब भाई ऑपरेशन हो गया है। तो जैसे फिर हम वहां कमरे पे गए तो उन्होंने भी अपना अनुभव बताया और मैंने भी अपना अनुभव बताया। तो हमें एक ही साथ एक ही समय ये अनुभव हुआ कि भाई मेरा ऑपरेशन, और उनको ये महसूस हुआ कि ऑपरेशन हो गया। तो उस दिन के बाद जैसे डॉक्टर साहब क्लास कराते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई ज्ञान का संबंध ब्रेन से है, और शांति पवित्रता का संबंध हमारी कर्मेंद्रियों से है, शांति का संबंध हमारे फेफड़ों से है, हार्ट का संबंध हमारे दिल से है, और सुख का संबंध पेट से है, और हार्मोन सिस्टम हमारे आनंद से है। जब हम आनंद की स्थिति में होते हैं तो इंडोरफिन निकलती है। तो मैं अफीम खाता था तो मैंने सोचा कि भाई डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें एंडोरफिन निकलती है, मेरे को इस बाबा ने टच किया स्पेशल कि भाई जब अंदर से एंडोरफिन निकल रही है, अफीम बन रही है, तो बाहर से खाने की क्या जरूरत है। उस दिन के बाद फिर मैंने कभी अफीम नहीं खाई। और नहीं, दुनिया में क्या कहते हैं कि अफीम माना धर्म, कि नौ से मांस अलग करने वाली बात होती है, कि लोग तो चाय भी नहीं छोड़ सकते, बीड़ी सिगरेट भी नहीं छोड़ सकते। तो हमने परमात्मा की ही मदद से ये अनुभव किया कि जरूर परमात्मा का कार्य है। तो दुनिया में ज्ञान बहुत देते हैं लेकिन शक्ति नहीं देते। तो हमें ये प्रैक्टिकल अनुभव किया कि यहाँ ज्ञान के साथ शक्ति मिलती है। तो जब फिर हम डॉक्टर साहब ने जैसा प्रोग्राम में बताया था भाई डाइट एक्सरसाइज मेडिसिन प्रॉपर ये एक्यूरेट फॉलो करो, तीन महीने के अंदर आर्टरी खुल जाएंगी। तो मैंने जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था तो मैंने एक्यूरेट 100% फॉलो किया। तीन महीने जो आदमी अफीम चरस बीड़ी सब कुछ पीता हो तो उन्हें नमक और चीनी भी नहीं खाई तीन महीने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे युगल ने भी साथ दिया, जो खाना यहाँ कैट प्रोग्राम में खिलाया जाता है, अंकुरित स्पाउट्स 11 बजे फल, दोपहर को लंच और 4 बजे फ्रूट, वही मैंने एक्यूरेट फॉलो किया। और डॉक्टर साहब ने सबसे बड़ी बात ये बताई थी कि जो यहाँ पर अपना चारट और मुरली जेब में रखेगा उसको कभी हार्ट की बीमारी नहीं होगी। उस दिन के बाद मैंने अपना चारट और मुरली सदा जेब में रखी। तो बाबा ने कमाल करके दिखाया। तो गांव में जैसे मैं तो पूरा आवारा सा था, लड़ाई झगड़े करने वाला, तो देखा मैं 3 महीने में पूरा बदल गया। तो गांव वाले ने सोचा भाई ये आदमी बदल सकता है तो कमाल है, जरूर भगवान का कार्य है। तो वहां से लगभग 150 लोग आए, जो गांव के सरपंच मोहजीज के, भाई जरूर ये परमात्मा का कार्य है। तो दादी जी, हमारे दादी, बड़े दादी जी प्रकाशमणि जी ने वरदान दिया था, हाथ उठाया था, डॉक्टर साहब ने कहा था कि भाई चाय पीने से हार्ट की 8 धड़कने बढ़ जाती हैं। तो दादी जी ने कहा था कि भाई कौन है कि जो चाय नहीं पियोगा। तो मैंने उस दिन हाथ खड़ा किया था, उस दिन के बाद मैंने चाय टच नहीं किया। और एक और बात, दादी जी ने वरदान दिया था कि कौन है भाई जो वीरवार और अतवार को आश्रम पे जाएगा। हमारे गांव से आश्रम 9 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो उस दिन के बाद मेरा अतवार और वीरवार को जाना कभी बंद नहीं हुआ, चाहे कितनी भी। एक बार की बात है कि -2 टेम्परेचर था, और पैसे तो हमने खर्च कर दिए थे, कार कूर खरीदने का ब्योंत नहीं था। तो मोटरसाइकिल से मैं 9 किलोमीटर गया सवेरे, तो हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। और बाबा के कमरे में बैठ के बोच के 10 मिनट में ये लग गया कि हाँ भाई हाथ हैं। तो भी वो मतलब दादी जी के वरदान में वो शक्ति है। आज तक भी 6.25 साल हो गए, कभी भी वीरवार इतवार की क्लास मिस नहीं हुई। तो बहनों ने देखते हुए तो हमारे घर में गीता पाठशाला शुरू कर दी। और अब हमारे घर में मतलब पहले प्याज लहसुन अंडा मीट मांस सब चलता था, लेकिन अब हमारे घर में कोई बीड़ी पीने वाला शराब पीने वाला भी नहीं आ सकता, चाहे हमारा कितना ही नजदीक का रिश्तेदार है या चाहे किसी का, और कोई भी नहीं। अब पहले वो सोचते थे कि भाई ये जी जाए तो अच्छा है। मैंने पहले नशा मुक्ति केंद्र में भी सब बुराई छोड़नी चाहिए, लेकिन छूट नहीं पा रही थी। तो कैड प्रोग्राम करने के बाद तो मैंने ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बुराई थी नहीं, स्पेशल मेरे को बाबा से शक्ति मिलती रही। तो जैसे यहाँ अन्न की शुद्धि के बारे में बताया गया, तो प्याज लहसुन अंडा मीट मांस की तो दूर बात रही। मैंने या तो अपने घर भोजन किया जो यहाँ बताया गया था, या आश्रम पे, या कहीं ब्रह्मा भोजन में, या मांट आबू, 5वीं जगह मैंने कभी भी भोजन नहीं किया। मतलब ये बाबा की शक्ति है। पहले हम सब जगह खाते थे, होटल में भी, रिश्तेदारों को भी, शादियों में भी, तब शराब शरूप पी के अध्ययन भूखे रह जाते, पड़े रहे थे यूं खेत खात में। तो अब उस दिन के बाद इन टाइम समय पर भोजन मिल रहा है, कभी भी ये महसूस नहीं है कि भाई तेरे को नहीं मिल रहा है, उससे भी बढ़िया मिल रहा है। तो ये भगवान की कमाल है। और मेरे को 5 ब्लॉक थी, और फिर मैंने सोचा कि भाई अपना ये तो देख भाई TMT करके तो देख। तो मैं एक दिन खेत में गया, हमने खेत का काम है, 2-3 मजदूर खेत में लग रहे थे, और हमारे लड़के भी 2 जवान है 18-20 साल के। तो मैं सोचे भाई अपना TMT, उनसे पहले कसी लेके खेत में लगा, उनसे बाद में उनसे ज्यादा काम किया, और मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई कि भाई मैं हार्ट का पेशेंट हूं। मतलब मैं ये भी भूल रहा हूं आज हार्ट का पेशेंट हूं, ये तो छोड़ो कि हार्ट का पेशेंट था, ये तो सिर्फ अनुभव सुनाने के लिए याद आता है। नहीं, मेरे को कभी अमृत वेला मिस नहीं, और 10 बजे सोता हूं, और कभी थकान नहीं होती, बिल्कुल 100%। जैसे 16-17 साल के बच्चे का हार्ट हो गया तो ऐसे हो गया था, नहीं तो उन्होंने तो डरा दिया था ऐसे हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे। तो जैसे गुप्ता जी ने एक बात बताई थी कि खुद का डॉक्टर खुद ने बनना पड़ेगा, बीमारी डॉक्टर ने पैदा नहीं की थी ना दवाइयों ने, विचारों से पैदा हुई थी, हमने अपने मन के विचार बदलने पड़ेंगे। तो मैंने अपने मन को पूरा बदला। यहाँ डॉक्टर साहब बताते हैं मन क्या है, टीम है, थॉट इमोशन एटीट्यूड और मेमोरी। तो उनके द्वार पर कैसी संकल्प स्मृति वृत्ति और भावनाएं, तो हमने बिल्कुल एक दक से चेंज कर दिया। परमात्मा ने इतना कमाल किया, इतना कमाल किया कि दिलाराम ने अब भी वरदान दिया कि दिल वाले तो हैं ही दिल में, और ये बिल्कुल मेरे को अनुभव होता है। अभी फिर मैं पांडव भवन गया था तो वहां मेरे को स्पेशल अनुभव कराया कि बच्चे दिल में है। तो ऐसा अनुभव सभी कर सकते हैं। बात यह है कि जो आज्ञाकारी हो, ईमानदार हो, डॉक्टर साहब ने कहा था जो फॉलो करेगा पूरे जीवन में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने जाड़ दांत की दवाई खाई 6 साल के अंदर, नहीं बाकी मैंने सिर के दर्द की भी कोई दवाई नहीं खाई आज तक। और मेरे जैसे तो यहां पर 500 पेशेंट हैं जो ये प्रोग्राम फॉलो करके ठीक हुए हैं। ओम शांति,
ओम शांति। एक मिनट ज्ञान सिंह, एक ज्ञान सिंह भाई, एक ज्ञान सिंह भाई, पहले देखो, पहले पुलिस वाले इसके पीछे रहते थे, उधर बता, उधर भाई, पहले पुलिस वाले, क्योंकि कई गड़बड़ भी करता था ना समाज में, अभी पुलिस वालों की सबकी सेवा ये करता है ना। ये बताओ जरा पुलिस
वाले। ओम शांति। पहले तो लड़ाई झगड़े के कारण केस भी थे, कोर्ट थाने सारे हमने देखे हैं, जेल भी सब कुछ देखे। पहले तो हमारे पीछे पुलिस पड़ी रहती थी, भाई सुधरो सुधरो सुधरो। जब फिर हमने कैट प्रोग्राम अटेंड किया तो हम फिर पुलिस वालों के साथ, बहनों के साथ, मैं कार चलाता आश्रम पे काफी टाइम देता, तो जेल में भी उनके साथ गया तो उनको कहते हैं कि सुधरो। फिर यहां हमारे पुलिस ऑफिसर भी करनाल से काफी आए कि उन्होंने कहा वाक्य में तुम सुधरे और सुधार सकते हो, ये मतलब पुलिस नहीं कर सकती है तो संस्था ही कर सकती है। तो पहले पुलिस पीछे थे, हम पुलिस वालों के अब पीछे हैं कि भाई सुधरो सुधरो सुधरो। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम चलाते हैं तो आज कोई भी खुद अपने लिए भी परहेज नहीं करता और अपने बच्चों के लिए भी कोई परहेज नहीं रखता, ना कोई बच्चे अपने माँ बाप के लिए परहेज रखते। लेकिन यहाँ का कमाल जो मेरे को सबसे बड़ी बात लगी, और हमारे युगल को भी घर जाके बात तो करते रहते हैं, कि डॉक्टर शीश गुप्ता जी अपने पेशेंट के लिए खुद परहेज रखते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। हम इससे प्रभावित हुए तो फिर हमने, हमारे युगल ने वही खाना खाया जो यहाँ खिलाया गया। तो बाद में कभी संकल्प भी आता था कुछ खाने का, चीनी और चीनी की बनी हुई चीजें, तो कहते थे आपस में, नहीं जब डॉक्टर साहब हमारे लिए नहीं खा सकते तो हम क्यों खाएं। तो उस दिन के बाद हमने खाया नहीं। बस जैसे हम हरियाणा में घी दूध ज्यादा होता है तो 10-15% ये घी दूध खा लेता हूं मैं, बाकी कोई ऐसा तड़े तो चीज मैं घर बनाए भी नहीं खाता। तो वीरवार को टोली देते हैं तो बहने हमारे को फल ही देते हैं, तड़े ही नहीं देते, उन्हें पता कि खाता नहीं। ओम शांति।
तो ओम शांति। तो देखिए ऐसा, ऐसे बाबा के बच्चे जो कहां से कहां बन गए, किसने बनाया? शिव बाबा ने। कहां से हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, ये है राज्यों की शक्ति, ये है बाबा की शक्ति, ये है बाबा का प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमें कैसे बनना है मैं आपको कुछ शब्दों में बताऊंगा। पहली बात तो ये, आप एक एक बात मन में नोट करते जाएं। पहली बात तो जो है वो है, हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना है, हील दाई। हील दाई माना हील योर सेल्फ, अर्थात आप अपनी हेल्थ के लिए खुद जिम्मेवार हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आत्मा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आपको खुद को अपनी जिम्मेवारी खुद अपने हाथ में लेनी होगी। सारे विश्व में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो आपकी हेल्थ को ठीक कर सकता है, वो कौन है? स्वयं आप। तो अब आपको सोचना है, जब आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप अपने आप को हील कर रहे हैं डैमेज कर रहे हैं? आप अपने आप को हील कर रहे हैं कि बीमार कर रहे हैं? बीमार करते हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने आप को हील करते हैं कि बीमार करते हैं? बीमार करते हैं। जब उदास होते हैं तो हील करते हैं कि डैमेज करते हैं? नुकसान करते हैं। तो जब आप हर चीज देख ले, जैसे बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, क्या ये संकल्प, क्या ये बोल, क्या ये कर्म बाप का है? फॉलो फादर, टैली करो। बाबा कहते टैली करो, मिलान करो, कॉपी करो। क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया था? क्या बाबा ने कभी जल्दीबाजी की? क्या बाबा ने कभी चिंता की? बाबा की इतनी जिम्मेवारी, आज भी बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है? क्या दादी जी के ऊपर कम जिम्मेवारी है? दादी जानकी जी 95 इयर्स की एज में जिम्मेवारी कम है ज्यादा है? चलिए दो मिनट बाबा को बहुत प्यार से याद करें, अपने को आत्मा समझ के बाबा को एकदम याद में टिक जाएं। तो सबसे पहली बात, हेल्दी माना हील दाई, मुझे खुद अपनी जिम्मेवारी अपने हाथों में लेनी है। जैसा मैं बचपन से लेके अब तक, स्पेशली ब्राह्मण बनने से, जब से बाबा मिला उसके बाद, क्योंकि जब से पहले मैं ब्राह्मण नहीं था तब बात अलग थी, किंतु जब से ब्राह्मण बना, पहले शायद जैसे छोटी दुकान के व्यापारी होते ना, छोटी दुकान जैसे होती, परचून की दुकान होती है, और फिर जैसे बड़े हीरे के व्यापारी बन गए, जैसे बाबा ने हमें अपना बनाया हम जैसे हीरे के व्यापारी बन गए। तो अभी हमको, पहले हमारा नुकसान 100 रुपए का था तो फायदा भी 100 रुपए का होता था, जब से बाबा के बच्चे बने तब से हमारा फायदा अगर लाखों रुपए का है तो नुकसान भी लाखों रुपए का होता है। तब से हमें 100 गुना का नुकसान हो गया, फायदा है बाबा को याद किया सौ गुना फायदा, और नुकसान अगर बाबा को भूल के किसी और को याद किया तो नुकसान कितना, एक गुना, नुकसान भी सौ गुना। तो तब से अब ये समय ध्यान रखना है कि हमें बीमारी क्यों हुई है, बचपन से लेकर अभी तक कोई भी बीमारी है, चाहे मन की बीमारी है या नींद नहीं आती है या गुस्सा आने की आदत हो गई, चिंता करने की आदत हो गई, उदास होने की आदत पड़ गई, डिप्रेशन हो गया, या कोई और मानसिक बीमारी या तन की कोई बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियां कमजोर हो गई, गर्दन का दर्द, एसिडिटी बनती है, कमर का दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, अस्थमा हो गया, या कोई भी तन का रोग किसी को भी हो गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन, उसके लिए जिम्मेवार कौन, कौन स्वयं में। जब बचपन से लेकर अब तक जो कुछ मैंने सोचा है, जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, जो कुछ बोला है, जो कुछ खाया है, जो कुछ कर्म किए हैं अपने हाथों से, उसके कारण मुझे बीमारी हुई है, जो गलत किए हैं, और मुझे अब से 12:06 से ये संकल्प लेना है कि अब से मुझे जो भी करना है, जो सोचना है, जो देखना है, जो बोलना है, जो भी सुनना है, जो भी खाना है और जो भी कर्म करना है, किसके लिए करना है, उससे आत्मा शक्तिशाली बननी चाहिए। पहली बात, मन कैसा बनना चाहिए, मन दुरुस्त बना, मन खुश रहना चाहिए और हमारा तन स्वस्थ रहना चाहिए। क्योंकि ये जो संगम का शरीर है, संगम का जो समय मिला बहुत सुहावना है, सारे कल्प में बाबा कभी नहीं मिलेगा और सारे कल्प में हम कभी सेवा नहीं कर पाएंगे, अपना भाग्य नहीं बना सकते। अगर हमारा मन और तन स्वस्थ होगा तो हम बहुत सेवा कर सकते हैं, बहुत बहुत माना बहुत। पूरे कल्प का भाग्य बनाने का समय अभी है, बैंक अभी खुली हुई है, बैंक फिर बाद में बंद हो जाएगी, जमा करने की बैंक अभी खुली है ना कि बंद हो गई, अभी खुली है, तो अभी जितना चाहो उतना कमा सकते हैं, उतना जमा कर सकते हैं। कहते हैं दुनिया में, दुनिया के शेयर्स होते हैं, शेयर मार्केट होती है, हमने तो कभी शेयर का कुछ सोचा भी नहीं, कभी किया भी नहीं, पर शेयर मार्केट होती है, उसमें कहते हैं ना कोई शेयर 10 रुपए का शेयर आज, पहले था 10 रुपए का, आज उसकी वैल्यू 10,000 रुपया है। जो बाबा के यहां जो है ना, आज मान लीजिए शेयर 10 रुपए वाला शेयर मान लीजिए आज भले 8 रुपए का भी हो, दुनिया को उसकी वैल्यू ना भी हो, किंतु हमें यह बात पता है, निश्चय है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। क्या विश्वास है कि आज जो शेयर 8 रुपए का है, 10 रुपए वाला, उसकी वैल्यू कल 8 करोड़ हो जाएगी, और जिस शेयर की वैल्यू आज 10,000 है वो 5-10 पैसे का भी नहीं रहेगा, राइट। तो हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, तन मन धन कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, संकल्प श्वास समय कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, 10,000 वाले शेयर में जो डूबने वाला है, या वो शेयर जिसमें 8 रुपए इसकी कीमत है आज, वो आज 8 रुपए में मिल रहा है, तो हम किसमें शेयर, किसमें इन्वेस्ट करें, 8 रुपए वाले। तो अब से हमें सदा स्वस्थ होना है। अब कुछ बातें आप समझ लें कि कैसे हमें स्वस्थ होना है। तो मैंने बताया हेल्दी माना हील डाई, कि मुझे खुद को खुद ठीक करना है। दूसरा, हेल्दी को हिंदी में कहते हैं स्वस्थ। स्व माना मैं कौन हूं, आत्मा। तो स्व माने आत्मा, स्व माना इनर सेल्फ। हिंदी में जो है ना, हिंदी शब्दकोश में अगर मतलब देखें, स्व का मतलब आत्मा है, बाबा की मुरली में भी आप रोज सुनते हैं, स्व माना आत्मा, स्वदर्शन माना आत्मा का दर्शन। तो स्व माने आत्मा और स्था माना स्थित, स्व माना सोल, स्था मीन्स कॉन्शियस, अर्थात स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस। मैं एक आत्मा हूं। स्वस्थ कौन है, जो अपने को आत्मा समझ के हर कार्य करता है, वो है स्वस्थ। बीमारी शब्द कहां से आया, बी माना भय डर, मारी माना बने रहना, तो बीमारी माना डर बने रहना। अगर आपको डर बने रहता है, भय बने रहता है, तो आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाते हैं। और स्वस्थ माना सोल कॉन्शियस, जब अपने को आत्मा समझते डर निकल जाता है। आत्मा आत्मा है तो डर है क्या, आत्मा समझे तो डर है क्या, मरने का डर है, बीमार होने का डर है, बूढ़ा होने का डर है, एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? स्वस्थ की एग्जाम्पल कौन है हमारे पास? हमारी दादी है ना। ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा है भी, अब आकार में है, फरिश्ते रूप में है, और दादी हमारे पास दादी जानकी है ना, आदरणीय दादी जानकी जी। 95 की एज में भी देखो, अमृत वेला, हम सबसे पहले मुरली, कितनी एनर्जी, कितनी शक्ति। तो ये स्वस्थ जो सोल कॉन्शियस है, बाबा सदा उसके साथ है और उसको कोई डर नहीं, अर्थात वो कभी बीमार नहीं। तन के हिसाब किताब कर्म भोग भले आते, किंतु हमें कभी भी तंग नहीं करते, हमें कभी दर्द नहीं देते, परेशान नहीं करते। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो हेल्दी माना सोल कॉन्शियस, और एवर हेल्दी माना ऑलवेज सोल कॉन्शियस। सत्युग में सब स्वस्थ क्यों है? सत्युग में कोई बीमार नहीं है, सब निरोगी है। क्यों है? क्योंकि वह सबके सब कैसे हैं? सोल कॉन्शियस। सत्युग में सबके सब सोल कॉन्शियस हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जहां पर, जहां कोई बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान हो। तो ये है कुंजी, की टू हेल्थ इज क्या है? की टू हेल्थ, स्वस्थ बनने की चाबी क्या है? दिन रात उठते बैठते, चलते फिरते, खाना खाते, हर कर्म करते, क्या समझो अपने को? मैं आत्मा हूं। ट्विंक, एक कविता पढ़ी होगी ना बचपन में आपने, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कवि ने कविता क्यों लिखी? ये कवि ने जिसने कविता लिखी है, उसने भी कविता इसलिए लिखी, एक शाम है जिस दिन वो बहुत उदास है, आज शाम के समय तारे देख रहा आसमान में। क्यों उदास है? क्योंकि उसका दोस्त दिन में मर गया, उसकी डेथ हो गई, उसके साथ ही था, अचानक डेथ हुई। तो सोच रहा है, मेरा दोस्त कैसे मर गया? ठीक ठाक था, मेरे साथ बैठा था, अचानक क्या हुआ उसे, वो मर गया। तो तब उसके ध्यान में आता है कि जब क्राइस्ट ने जन्म लिया तो भी कहा था एक स्टार ने आके जन्म लिया, एक तारा आसमान में था, उसने आके जन्म लिया। तो उसको ध्यान आया कि यहां पर एक सितारा है, जब तक वो चमक रहा है तब तक सब कुछ कार्य कर रहा है, जब वो चमकना बंद कर देता है तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अर्थात वो तारे से, वो सितारे से सारी एनर्जी बॉडी की हर कोशिका को पहुंचती है, जिससे हमारी बॉडी काम करती है, और वो काम सारा दिन चलता है। हार्ट भी चल रहा है दिन रात, दिमाग भी चल रहा है, लंग्स में हम सांस भी ले रहे हैं, हर कार्य हो रहा है, हर समय हो रहा है। एक रिसर्च के अनुसार हमारी बॉडी 70,000 बिलियन सेल से बनी हुई है। 70,000 बिलियन, बिलियन एक बिलियन में 100 करोड़, इतनी सारी कोशिकाओं से बनी है हमारा शरीर, और एक कोशिका में एक सेकंड में 1,00,000 रिएक्शंस होती हैं। कितनी रिएक्शंस होती हैं? 1,00,000 एक सेकंड में। एक सेकंड कितना होता है? एक सेकंड हो गया, इतनी देर में एक रिएक्शन हो गई, 1,00,000 रिएक्शन हो गई एक कोशिका में, मतलब 1,00,000 कोशिका में इतनी रिएक्शन हुई, और साथ साथ उनके टॉक्सिन्स भी बने, वो भी साफ हो गए। क्योंकि हम जब जल्दीबाजी करते हैं, गुस्सा करते हैं, चिंता करते हैं, उदास होते हैं, तो 1,00,000 की बजाय 1,25,000 रिएक्शंस हो जाती हैं, 1,50,000 रिएक्शंस हो जाती हैं। तो बॉडी की कैपेसिटी 1,00,000 रिएक्शंस के टॉक्सिन साफ करने की है एक सेकंड में, किंतु 1,25,000 नहीं कर सकती है। टॉक्सिन बच गए, 25,000 जो टॉक्सिन बच गए बॉडी में, उससे बीमारी पैदा होती है, उससे रोग पैदा होते हैं, चाहे मन के चतन के। वो टॉक्सिन्स जो बचते हैं वो अंदर डिसईज पैदा करते हैं। रियल वर्ड क्या है? डिसईज, लॉस ऑफ ईज। डिजीज कहते हैं इंग्लिश में, डिसईज, लॉस ऑफ ईज। वो जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन बच गए शरीर में, बॉडी में, वो टॉक्सिन्स वहां पर तकलीफ पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, ईज खत्म कर देते हैं, उससे बीमारी पैदा होती है। हमारे अंदर यहां हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस, ये दो ब्रेन है, राइट और लेफ्ट ब्रेन, उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, जिसमें दोनों ब्रेन हमारे मॉड्यूलेशन होता है, जो भी अंदर दिमाग में हम जो भी एक्टिविटी होती है उनका यहां कंट्रोल केंद्र है। उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, उन दोनों के बीच में आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा की सीट कहां पर है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में। तो जब हम यहां पर हाइपोथैलेमस में एक घड़ी लगी है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, उस घड़ी के अनुसार हर काम करिए आप, तो हर काम सहज होगा। उस घड़ी में उठने का समय, सोने का समय, नाश्ता करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, सैर करने का समय, हर चीज का समय उसमें निश्चित है। अगर आप उस घड़ी के अनुसार हर कार्य करते हैं तो आपका वो कार्य एकदम सहज होता है, किंतु वो उस घड़ी के खिलाफ कार्य करते हैं या उससे आगे पीछे कार्य करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीजन में अगर आप टमाटर लेने जाओ, टमाटर मार्केट में लो, बिना सीजन के वही टमाटर 50 रुपए किलो मिलते हैं और सीजन में वही टमाटर 3-4 रुपए किलो मिलते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, आम का रेट या कोई भी चीज का, गोभी का रेट, कोई भी चीज देखो तो सीजन में सस्ती मिलती है और बिना सीजन के महंगी मिलती है। इसी तरह से उस सीजन में उसका अचार डालो, आम का अचार डालो या चिप्स बनाने, आलू के आलू की चिप्स बनाओ तो वो टिक जाते हैं, अगर बिना सीजन के बनाएंगे तो खराब हो जाते हैं। इसी तरह से नाश्ता कितने बजे करना है, उस समय नाश्ता करें तो उसके एंजाइम निकलते हैं बॉडी में, खाना तुरंत पच जाएगा, किंतु उस टाइम को छोड़ के आप दूसरी तरह समय नाश्ता करेंगे, मिस कर देंगे या आगे पीछे करेंगे तो वो बीमारी का रूप धारण करेगा, है ना। ऐसे सुबह उठने का समय जैसे 4 बजे है, 4 बजे के बाद बजाय 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं तो आपको नुकसान होगा। अब मैं आपको बताता हूं इस क्लॉक के अनुसार कैसे कार्य करना चाहिए। अब तीन, जैसे हम सभी जानते हैं, बाबा के बच्चे सभी जानते हैं, हम आत्मा हैं, राइट, मैं आत्मा हूं। अब आत्मा के अंदर, आत्मा कैसे शरीर को चला रही है, आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मैं आपको योग का प्रयोग करना सिखाऊं, कैसे अगर आपको कोई बीमार है तो कैसे अपनी बीमारी को ठीक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी उसको आप ध्यान से सुनिए। तो आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार, जिसके द्वारा शरीर को कार्य, शरीर से सारा कार्य करती है। मन को कोई, आत्मा को कोई भी शक्ति शरीर को देने किसके द्वारा देगी, मन के द्वारा। जैसे हाथ है ना, हाथ बॉडी का पार्ट है, किंतु मुझे आपको कोई चीज देनी तो कैसे, हाथ से देंगे, और लेनी हो तो हाथ से ही लेंगे, तो है तो बॉडी का पार्ट। ऐसी मन जो है आत्मा का ही पार्ट है, किंतु उसका आत्मा मन के द्वारा ही कोई चीज देनी या लेनी करती है। तो मन क्या चीज है, मन के अंदर 4 बातें आती हैं। बाबा ने मुरली में बताया था, 31 दिसंबर 1999 की मुरली, 99 की मुरली, 31 दिसंबर 99 की मुरली में बाबा ने बताया था, आत्मा के चार, मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं। हिंदी में कहते हैं स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प। इंग्लिश में कहते हैं मेमोरीज, एटीट्यूड्स, इमोशंस और थॉट्स। अगर इसको उल्टा करके पढ़े तो क्या बन जाएगा, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, मतलब टीम। थॉट्स माना संकल्प, इमोशंस माना भावनाएं, एटीट्यूड्स माना वृत्ति और मेमोरीज माना स्मृति। तो अगर मन माना टीम, आपने सुना होगा मन का कितना वजन होता है, मन का वजन कितना, दिमाग का वजन, ब्रेन का वजन 1100-1200 ग्राम होता है, मन का वजन कितना होता है, कोई बताएगा, मन का वजन कितना होता है, कोई वजन नहीं होता है, पर मैंने सुना है लोगों को बहुत कहते हुए, आज मेरा मन इतना भारी है कि मैं उठ भी नहीं सकता बिस्तर से, नहीं सुना। और कभी कभी हम कहते हैं मेरा मन आज इतना हल्का दिल करता उड़ू, मैं ऐसे उड़ रहा हूं, मैं उड़ रही हूं, है ना। तो मन भारी कब होता है, हल्का कब होता है, जब हमारी टीम पॉजिटिव होती है तो हम हल्के होते हैं। जब हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा एटीट्यूड, हमारी मेमोरी, स्मृतियां पॉजिटिव होती हैं, सकारात्मक होती हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं। और जब हमारी टीम नेगेटिव हो जाती है, हमारे विचार नेगेटिव, हमारी भावनाएं नेगेटिव, हमारा जीवन के प्रति एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है, हम पुरानी पुरानी बातों को याद करते हैं, जो खराब बातों को याद करते हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है और हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आत्मा अपनी 7 एनर्जीज को, आत्मा से 7 एनर्जी निकलती है, 7 तरह की लाइट निकलती है, 7 तरह के गुण कह सकते हो, ये एनर्जी यहां से निकल रही है फवारे के रूप में, जो शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है, जिसके कारण ही हर कोशिका काम करती है। अगर जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कोशिका, वो अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो आत्मा से 7 एनर्जी कौन सी निकल रही है, आत्मा से, और शरीर की हर कोशिका को एनर्जी चाहिए, 7 एनर्जी चाहिए। पहली एनर्जी ज्ञान है, ज्ञान माना ये जो ज्ञान, बाबा का ज्ञान, बाबा ने जो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान वैसे तो बहुत बड़ा है ज्ञान। बाबा कहते हैं पूरे सागर को शाही बनाओ, पूरी धरती को कलम बनाओ, जंगलों को कलम बना दो, तो भी ये ज्ञान लिखा नहीं जा सकता है। किंतु सार रूप में ज्ञान है ए बी सी डी। क्या है ज्ञान? ए बी सी डी। ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन। मुझे आत्मा का सारा संबंध किससे है? बाबा से है। वही मेरा मां है, वही मेरी बाप है, वही मेरा टीचर है, वही मेरा सतगुरु है, वही मेरा बंधु है, वही सखा, वही साजन, वही सर्जन है, है ना। डी फॉर ड्रामा। ये संसार एक ड्रामा है, नाटक है, इसमें हम सिर्फ एक्टर्स हैं और शिव बाबा इसका डायरेक्टर है। वो डायरेक्ट कैसे कर रहा है इस ड्रामा को? कर्म सिद्धांत के अनुसार। जो एक्टर्स हम मेरे आसपास हैं, वो मेरे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, दोस्तों के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, बिजनेस पार्टनर के रूप में, पड़ोसी के रूप में, मेरे आसपास ही हैं। और वो जो कुछ मैंने उनके साथ पिछले जन्म में कर्म किया है, जैसा किया है वैसा ही मुझे वापस कर रहे हैं। अगर मैंने उनको अच्छा किया है तो मुझे अच्छा मिल रहा है, अगर बुरा किया है, वो मेरी पत्नी भी हो सकती है, मेरा माँ बाप भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, अपना मेरा बेटा बेटी भी हो सकते हैं, तो उनसे मुझे अच्छा करते करते भी बुरा मिलेगा। तो ये इस कर्म सिद्धांत के अनुसार बाबा इस ड्रामा को डायरेक्ट करता है। तो ये है ज्ञान ए बी सी डी। और ये ज्ञान यहां से सारी बॉडी में जा रहा है। किसके थ्रू? मन के थ्रू जा रहा है। दूसरी एनर्जी है पवित्रता। इस ज्ञान से पवित्र होते हैं हम। बाबा भी पहले ज्ञान का सागर है, फिर पवित्रता का सागर। जितना ये ज्ञान हमारे अंदर बैठ जाता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सरल संबंध उसके साथ हैं, क्योंकि देने वाला सिर्फ मुझे ये वो है, बाकी सब लेने वाले हैं, कोई भी हो, सब देदारी सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाला कोई नहीं है। और संसार एक नाटक है, इसमें सब एक्टर्स हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो जितना हमारे अंदर एबीसीडी पक्का होता जाता है, उतना ही मन पवित्र होता जाता है। और जितना मन पवित्र होता जाता है, उतनी शांति आती जाती है। जितनी शांति आती जाती है, उतना सबके प्रति प्यार पैदा होता जाता है। जितना प्यार पैदा होता जाता है सबके प्रति, उतना सुख की अनुभूति आत्मा करती है। जितना सुख की अनुभूति होने लगती है, उतना आनंद में रहने लगता है आदमी। और जितना आनंद में रहने लगता है, उसके लिए परख शक्तियां उसके अंदर आ जाती हैं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, मतलब पहाड़ जैसी बात को भी राई बनाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो ये सात एनर्जी बॉडी से, यहां से आत्मा से निकल के सारी बॉडी, सातों एनर्जी बॉडी के हर अंग के लिए आवश्यक है, किंतु एक शक्ति स्पेशल है, एक गुण, एक एनर्जी इस बॉडी के एक अंग के लिए स्पेशल। जैसे ब्रेन के लिए क्या आवश्यक है? ज्ञान। जितना अधिक ज्ञान है आपके अंदर एबीसीडी, जितना अधिक बहता है दिमाग की सेल्स में, उतना ही दिमाग आपका अच्छा काम करता है, उतना ही आपकी मेमोरी अच्छी होती है, उतना ही आप उसका आपका आईक्यू अच्छा, आईक्यू माना इंटेलिजेंस अच्छी है, उतना ही ईक्यू माना इमोशनल इंटेलिजेंस, अर्थात आप सबको सहयोग करते हैं, उतना ही आपका एसक्यू माना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, उतना ही अधिक आप आत्मिक स्थिति में टिक सकते हैं। और जितना उतना ही अधिक एचक्यू, लेटेस्ट जो है वो एचक्यू है, हैप्पीनेस क्वेश्चन, उतना ही आप खुश रह सकते हैं। और चारों एनर्जी का बैलेंस, चारों क्यू का बैलेंस आपके दिमाग में रहेगा, उतना ही अधिक आप क्रिएटिव, उतना ही अधिक आप नई नई काम कर सकते हैं, नई नई सेवाएं कर सकते हैं, तुरंत निर्णय ले सकते हैं, परख सकते हैं, बड़ी बात को छोटा कर सकते हैं, समेट सकते हैं। तो ये जितना ज्ञान एबीसीडी, यहां से आत्मा से ज्ञान दिमाग में जा रहा है, और दिमाग से होता है बॉडी की हर कोशिका में जा रहा है। माध्यम है मन, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। अगर स्मृति में आपके है, मन में स्मृति में गई है कि सभी ज्ञान ऐसा ही होता है, विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, तो दिमाग में जाएगा नहीं। निश्चय विश्वास दृढ़ता नहीं है कि बाबा आया है, पूरे कल्प में अब आया है, अब मुझे सब कुछ मोह छोड़ करके, दुनिया का मोह छोड़ के, बच्चों का मोह छोड़ के, बिजनेस का मोह छोड़ के, सब चीज छोड़ करके मुझे अब मुरली सुनने जाना ही है, मुरली दिन में 10 बार रिवाइज करनी ही करनी है, मुझे बाबा की श्रीमत पे चलना ही चलना है चाहे कुछ भी हो जाए, घर में शादी हो, कोई मर गया हो, कुछ भी हुआ हो, मुझे बाबा को उठ के याद करना ही है। ये ज्ञान तभी से ऐसी स्मृति हो, ऐसी वृत्ति हो, ऐसी भावना हो, शुभ भावना हो, और ऐसे श्रेष्ठ शुद्ध और कल्याणकारी संकल्प हो, तो दिमाग में जाके ज्ञान बैठता है। नहीं तो मुरली सुनते भी ज्ञान दिमाग में नहीं बैठता है। मुरली अभी सुनी और बाहर देखो तो भूल गए, बाहर जाके देखो कुछ भी याद नहीं। तो अगर हम इतना मेरी टीम पॉजिटिव है तब दिमाग में ज्ञान बैठता है। ये ज्ञान भले सामने सुनाने वाला कोई भी हो किंतु शिव बाबा की मुरली है, सिर्फ मेरे लिए है, तब ये ज्ञान दिमाग में बैठता है। फिर दूसरी शक्ति है पवित्रता। पवित्रता आंखों के लिए, नाक कान मुख के लिए, पूरी त्वचा के लिए, बाहर की त्वचा, अंदर भी, मुंह में भी त्वचा है, पेट में भी त्वचा है, वो अंदर की त्वचा है, फेफड़ों में भी त्वचा है, वो अंदर की है, सांस की नाली, पेट की नाली में भी त्वचा है, इवन जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं उनके अंदर जो नाली जो है, अंदर की लाइनिंग, वो भी त्वचा है एक तरह की, वो पूरी पवित्रता से नरिश हो रही है। मेरा इम्यून सिस्टम, बीमारी से लड़ने का सिस्टम इससे नरिश हो रहा है। जितना अधिक पवित्र हूं उतना ही मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बीमारी का कोई कीटाणु मेरे को अटैक नहीं कर पाता है। आंख देखना, सूंघना, सुनना, हमारी जो जीभ है, बोलना, हमारी स्किन है, वो जो है पूरी अच्छा काम करती है। उम्र बीत जाने पर भी हमारा अच्छा साथ देती है, भले उम्र के साथ हमारे जो कर्म भोग है दुख सुख आएंगे किंतु उसके बाद भी मेरी सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहता है। फिर शांति से, आत्मा शांति से लंग्स को नरिश करती है। जितना अधिक आप शांत हैं, आत्मा में शांति है, उतना ही अधिक आपके फेफड़े अच्छा सा गहरा सांस मिलता है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, स्लो सांस चलता है। और जितना आपको चिंता है, गुस्सा है, उतना सांस ऊपर ऊपर चलता है, फास्ट चलता है, जल्दी जल्दी चलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलती बॉडी को। तो आपको पता हो शायद, इन हमको श्वास गिन के मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं। अपने को आत्मा समझ के, परमात्मा की याद में रह के शांत रहते हैं ना, तो हमें श्वास हमारे, हमने देखा, रिसर्च में देखा, नॉर्मली हम 14 सांस एक मिनट में लेते हैं। जब हमारे पास पेशेंट पहली पहली बार आए, हमने को सांस को मशीन होती है, सांस गिन सकते हैं मशीन पे कि कितने सांस हैं एक मिनट में। और जब उनको राजयोग सिखा दिया गया, उन्होंने मेडिटेशन किया, अपने जीवन में अभ्यास किया, तो एक हफ्ते बाद ही उनके सांस की स्पीड 8 या 9 हो गई एक मिनट में। और वो सारा दिन जब मन में शांति है, मैं आत्मा हूं है, तो अपने आप ही सांस सारा दिन ही 8 चलते हैं। तो अगर आपने सांस 8 बार लिया 14 की बजाय 8 बार एक दिन में, एक हर मिनट लिया, तो कितने दिन चलेंगे? मान लीजिए मेरे पास 10 साल की सांस बाकी है, तो वही सांस मेरे 10 साल की बजाय 16 साल चल जाएंगे। इस तरह से योग से आयु बढ़ती है। और अगर आप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में रहते हैं, चिंता भय में रहते हैं, बार बार टेंशन में आते हैं, तो सांस हमारे 10-14 की बजाय 20 बार चलते हैं, 22 बार 25 बार चलते हैं। तो जो सांस 10 साल चलने चाहिए थे वो 6 साल में खत्म हो गए, 7 साल में खत्म हो गए। तो समय से पहले मृत्यु हो गई, इससे होती है अकाले मृत्यु। तो विकारों में जाने से हमारी अकाले मृत्यु होती है, और बाबा को याद करने से हमारी आयु बढ़ जाती है, निरोगी और आयु बढ़ जाती है। आत्मा प्यार से, प्रेम की शक्ति से हार्ट को नरिश करती है। जितना अधिक प्रेम आपके दिल में, यहां पर है आत्मा में, उतना ही हार्ट में ज्यादा खून बहता है, कोलेटरल खुल जाते हैं, नसें खुल जाती हैं, गुस्से के अंदर नसें सिकुड़ जाती हैं, उदासी में नसें सिकुड़ जाती हैं, खून नहीं जाता हार्ट में। जितना अधिक खुश आप रहते हैं, जितनी अधिक आत्मा में खुशी है, उतना ही आपका लीवर अच्छा काम करता है, जिगर, उतना ही अधिक आपका खाना अच्छा पचता है, हाजमा अच्छा होता है। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो खुश रहता है उसके अंदर उसका हाजमा बहुत अच्छा होएगा। और जो बात बात में फील करता है, सेंसिटिव नेचर के लोग जो होते हैं, थोड़ी थोड़ी माताएं जैसे कई बार होती हैं, सेंसिटिव होंगी, थोड़ी थोड़ी बात फील करेंगी, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती है, तो उनके खाना पचेगा ही नहीं, या एसिड बनेगा, एसिड ऊपर चढ़ेगा, हाजमा नहीं होगा ठीक, कब्जी रहेगी, या बार बार जाना पड़ेगा स्नान करने। तो आंतों की खराबी हो जाती है। इसकी बजाय आप खुश रहिए सदा, तो आपका हाजमा एकदम परफेक्ट बढ़िया होगा। आनंद की शक्ति से आपके हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियास जिससे डायबिटीज होती है, एड्रिनल ग्लैंड, जितने भी हार्मोन्स हैं वो ठीक बैलेंस में निकलते हैं। अगर वो आप आनंद में रहते तो आपकी थायराइड की बीमारी हो जाएगी, आपको डायबिटीज हो जाएगी, है ना, कई और रोग पैदा हो जाते हैं। और शक्तियां मिलकर के, आठों शक्तियां, परखने की शक्ति, निर्णय, जो आठ शक्तियां हैं वो मिलकर के हमारी हड्डियों को नरिश करती हैं, ज्वाइंट्स, जोड़ों को नरिश करती है, मसल्स, मांस को नरिश करती है, मांसपेशियों को नरिश करती है। जो व्यक्ति जैसे सहन करने की शक्ति ना हो, सामना करने की शक्ति ना हो, बात बात पे जिद करते हैं कई लोग, गर्दन माना, एक्चुअली हर ज्वाइंट का मतलब क्या है, हर ज्वाइंट का मतलब कोई ना कोई शक्ति से है। गर्दन माना फ्लेक्सिबिलिटी, कमर माना बेंडिंग, हाथ माना सहयोग करना। तो हर शक्ति, कोई हर जोड़, हमारे शरीर का हर जोड़ कोई ना कोई शक्ति से कनेक्शन है। अगर वो शक्ति हमारे अंदर कम होती है, वो अंग जल्दी कमजोर हो जाते हैं, वो जोड़ जल्दी कमजोर हो, जल्दी बीमारी, कमर की तकलीफ, घुटने की तकलीफ, हड्डियां कमजोर, खोखली हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां खोखली हो जाएंगी। तो फिर आपको बार बार कैल्शियम गोली खाते रहो, गोली खाते खाते भी कैल्शियम ठीक नहीं होता है, क्यों, क्योंकि शक्ति नहीं है हमारे अंदर। हमने ऐसे बहुत सारे मरीजों पर एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे मरीजों हमारे पास आते हैं, घुटने भी खराब हो गए थे, कमर का दर्द, कमर, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, कि जब उन्होंने उस विशेष शक्ति का प्रयोग किया अपने अंदर और साथ में थोड़ा खान पान में परिवर्तन लाया, तो उनके आज उनको ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ऐसे शक्तियों का प्रयोग करने से आप अपनी हड्डियों को ठीक कर सकते हैं, जोड़ों को ठीक कर सकते हैं, आपको एसिडिटी बनती है, आप खुश रहकर के अपने खुशी की शक्ति का प्रयोग करके अपनी इसको ठीक कर सकते हैं, अल्सर को ठीक कर सकते हैं, आंतों की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, दमे की तकलीफ है, आप शांति की शक्ति का प्रयोग करके आप फिर दमे को ठीक कर सकते हैं, हार्ट की बीमारी है, प्यार की शक्ति का प्रयोग करके आप हार्ट को ठीक कर सकते हैं। और सातों एनर्जी मिलकर के बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, पसीने के द्वारा और किडनी के द्वारा। तो इस तरह से आत्मा, आत्मा से सात एनर्जी निकलती है, मन के माध्यम से होती हुई और बॉडी के डिफरेंट अंगों में जाकर के वो हमारे अंगों को नरिश करती है। और अगर हम अपने कर्मेंद्र से कोई गलत काम नहीं करते हैं, एक्यूरेट काम करते हैं, श्रीमत पर कर्म करते हैं हर कर्म, तो क्या होता है, वो एनर्जी बाहर निकल करके हमारे आसपास वापस कंबाइन हो जाती है, सातों एनर्जी, और हमारे आसपास एक प्रभा मंडल बन जाता है, उसे कहते हैं ऑरा, इंग्लिश में कहते हैं ऑरा। और जितना, क्योंकि परमात्मा इन सातों एनर्जी का सागर है, जितना अधिक प्यार से बाबा को याद करें, जितना खुशी से याद करें बाबा को, उतना ही वो एनर्जी ज्यादा आएगी। और समय क्या है उस घड़ी के अनुसार, समय क्या है याद करने का, 4 से 5, क्योंकि शिव बाबा जो है वो तो उनकी, उनके कितने संकल्प चलते हैं एक मिनट में, शिव बाबा को संकल्प चलते हैं क्या, ड्रामा अनुसार, बाबा कहता मैं ड्रामा अनुसार आता हूं, अपना काम करके चला जाता हूं, बाबा को संकल्प नहीं चलते हैं। तो बाबा का तो 0 संकल्प है, ब्रह्मा बाबा को एक संकल्प है, कौन सा वाला, कि मेरे सब बच्चे जल्दी संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, उनको एक ही संकल्प है, तो उनका, उनको एक ही संकल्प है, मेरे जब 2 संकल्प होंगे तो मैं बाबा से कनेक्शन कर सकता हूं ना। और नॉर्मली आज के इंसान को लगभग 15 संकल्प एक मिनट में होते हैं, जब हम रात में सो रहे होते हैं तो हमारे 2-3 संकल्प चलते हैं गहरी नींद में, और 4 बजे की नींद बहुत गहरी होती है, जब हम उठते हैं 4 बजे या 3:30 बजे उठते हैं, उठ के उठो, ब्रश करो, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो जाओ, और फ्रेश होके बाबा को बहुत गुड मॉर्निंग करो, उठते ही गुड मॉर्निंग करके फ्रेश होके और बाबा की याद में बहुत प्यार से खुशी से बैठ जाओ। तो जैसे प्यार से खुशी में बैठते हैं तो बाबा से एकदम कनेक्शन लग जाता है। मेरे 3 संकल्प तो पहले ही थे, 4 संकल्प माना ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन, ड्रामा, 4 ही संकल्प हुए ना। तो जब मैं, अगर उठते ही मैं 3 संकल्प है, मेरे 4 संकल्प है, तो बैठते ही बाबा से कनेक्शन लग जाता है, और जैसे लगता है हम आनंद में चले जाते हैं। इस रिसर्च में आया है कि अगर सुबह 4 से 5 के बीच में 20 मिनट अगर हम आनंद में बैठ जाएं, आनंद की स्थिति में खो जाएं, तो हमारे 18 हार्मोन, 9 हाइपोथैलेमस से, 8 पिट्यूटरी से, 1 पीनियल ग्लैंड से, वो हार्मनी में निकल आएंगे। और फिर सारा दिन इसी तरह से 24 घंटा जब जब आवश्यकता होती है तो पल्सिस के रूप में वैसे वैसे ही हार्मोन हार्मनी में निकलते रहेंगे। अगर सुबह 4 से 5 के बीच में 20 मिनट आप आनंद में रह गए तो अगले 24 घंटे में आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, कोई बीमारी भी है, एसिडिटी, अल्सर, हड्डियों की तकलीफ, डिप्रेशन, कोई बीमारी भी है मन की या तन की, वो कम हो जाएगी। अगर ये आपने 4 से 5 के बीच में 20 मिनट आनंद में नहीं आया, आप आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया, तो वो अगले 24 घंटे में वो बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। इसलिए कहा गया इस समय जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो ये खाली ब्रह्मा कुमारों की बात नहीं है, ब्रह्मा कुमारी की बात नहीं है, जो भी इंसान धरती पर है उन सबके लिए एक जरूरी है कि उस बेचारे जो उठे मुंह हाथ धोके ब्रश करके, और छोटे बच्चे हैं आपके घर में, छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, उन सबके लिए जरूरी है कि उस सुबह 4 बजे उठे, फ्रेश होकर के बहुत प्यार से और खुशी से बाबा को याद करें, तो उनके जो हार्मोन्स बैलेंस में निकलेंगे और निकलने से और उनके अगली पूरी पूरा मन और तन स्वस्थ हो जाएगा। अब जब 4 से 5 अपने बाबा को याद किया, 18 हार्मोन निकल आए, वो एनर्जी, 7 एनर्जी यहां इकट्ठी हो गई, अब बॉडी में कैसे जाएंगी? माध्यम मन है। मन को पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि 8 बजे तक चुप रहो, बिल्कुल भी बोलो नहीं, कुछ भी नहीं बोलो, जहां तक हो सके चुप रहो, मन का भी साइलेंस रखो, तन मुख का भी साइलेंस रखो, सिर्फ जो बाबा ने उस समय अनुभव कराया, उसमें स्नान करते समय, ब्रश करते समय, शेव करते समय, जो भी कार्य करते समय बाबा की याद में करते जाओ, और फिर 7 से 8 मुरली सुन लो, क्योंकि रिसर्च ने बताया है कि सुबह से लेकर के और 8 बजे तक जो कुछ हम विचार करते हैं, टीम, जो भी थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज हम करते हैं, उससे हमारे 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल निकलता है। अगर हम ज्यादा टेंशन कर लेते हैं सुबह से लेकर, दुनियावी टेंशन, अखबार पढ़ लेते हैं, अखबार क्या है, नेगेटिव टीम, नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावना, नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव मेमोरीज होती हैं, तो हमारे ज्यादा टेंशन वाले हार्मोन निकल आते हैं, और ज्यादा टेंशन वाले हार्मोन निकलाए तो सारा दिन जल्दी, चिंता, गुस्सा अपने आप ही रहती, करना नहीं पड़ता है। जैसे कोई आदमी सुबह सुबह पॉइजन खा ले तो उसको सारा दिन उल्टी करनी पड़ेगी, अपने आप आती रहेंगे, अपने आप उल्टी आती रहेंगी, जी खराब रहेगा सारा दिन। ऐसी एक बार सुबह से 8 बजे तक आपने कुछ भी गलत बोल दिया, गलत सोच लिया, गलत बात को याद कर लिया, तो सारा दिन आपकी तबीयत खराब रहने वाली है। इसलिए 8 बजे तक बाबा ने नियम बनाया कि 8 बजे तक चुप रहो। बाबा ने की जो मुरली है अव्यक्त मुरली, सुबह एक आधी मुरली पढ़ लो या एक मुरली पढ़ लो अमृत वेला करते ही, फिर नहा धो के स्नान कर लो, फिर बाबा की मुरली सुनो 7 से 8, और बाबा की गोद में बैठ के सुनो। ये बाबा का लव लेटर है मेरे लिए है। लव लेटर कहां रखते हैं? कहां रखते हैं? दिल के पास ना। हमने हार्ट के प्रोग्राम में देखा कि जो लव लेटर यहां रखते हैं ना अपना, बाबा के पास, दिल के पास, और उसको दिल में 10 बार रिवाइज करते हैं, सारी मुरली नहीं, एक एक महावाक्य, दो दो महावाक्य 10 बार कम से कम रिवाइज करते हैं, उनको कभी दोबारा हार्ट अटैक नहीं आता। डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता है उनको। ऐसे बहुत सारे दिल वाले हैं, 3000 दिल वालों में से बहुत सारे दिल वाले हैं जो पिछले 10 साल में 12 साल में डॉक्टर के पास गए नहीं है। एक बार यहां आए उसके बाद डॉक्टर को जाना नहीं पड़ा है उनको, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है। ऐसे बहुत सारे, हाँ, जो 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 अपनी मरमत पे चलते हैं, परमत पे चलते हैं, उनका मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं, किंतु जो श्रीमत पे चलते हैं, एक्यूरेट जो है बताया जाता है यहां पर, वैसे फॉलो करते हैं, मुरली रोज सुनते हैं, 10 बार मुरली रिवाइज करते हैं, उनको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है। तो अब जो है जब ये 8 बजे तक आपने कर लिया तो फिर ये एनर्जी नीचे आ गई, बॉडी में आ गई, और उसके बाद अब ये शरीर से बाहर कैसे निकलेगी? शरीर की एनर्जी कहां से मिलनी चाहिए? 4 बातों से मिलती है शरीर को एनर्जी, भोजन से, एक्सरसाइज से, व्यायाम से, प्रॉपर नींद से और दवाइयों से। भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? भोजन होना चाहिए शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध माना परमात्मा की याद में, शुद्ध संकल्प में बनाया हुआ भोजन, और शुद्ध संकल्पों से खाना, बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना। सात्विक भोजन कौन सा? जो भोजन 7 गुणों को बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाए, पवित्रता को बढ़ाए, शांति को बढ़ाए, प्रेम, सुख, आनंद, शक्तियों को बढ़ाए, वो भोजन। ऐसा भोजन कौन सा है? फल, सब्जियां, अंकुरित। फल देख के किसकी याद आएगी? भगवान की याद आएगी, शिव बाबा की याद आएगी, नेचर की याद आएगी, किसी इंसान की याद तो नहीं आएगी कि इसने इतना अच्छा फल बनाया, ऐसे याद आएगी? तो ये भोजन हमें ज्ञान और हमारे शरीर को भी स्वस्थ बनाएगा, मन दिल हमारे आंतों की सफाई करेगा, ज्यादा फाइबर है उसके अंदर। तो फल, सब्जियां, अंकुरित, मूंग मेथी का अंकुरित ना, स्प्राउट्स, सब्जी, सिंपल सब्जी रोटी, बिना ज्यादा पका करके नहीं, दूध बिना, मतलब बिना मलाई वाला गाय का दूध। तो समय पर सुबह 8 से 9 के बीच में नाश्ता, दोपहर में 1 से 2 के बीच में लंच और डिनर, शाम को 7 से 8 के बीच में या 6 से 7 के, अंधेरा होने के लगभग पहले पहले। तो बाबा की याद में बनाना, बाबा की याद में खाना, सिंपल भोजन करना, अचार मसाले। अच्छा, रासिक भोजन कौन सा? पराठा पकौड़ा समोसा मिठाइयां, ये रासिक भोजन जो आलस पैदा करते हैं, अलबेलापन पैदा करते हैं। तामसिक भोजन कौन सा? जो भोजन हमारे उत्तेजना पैदा करे, नॉन वेजिटेरियन, अंडा मीट मांस मछली। दूसरा लहसुन प्याज, बासी भोजन है ना, जो बोतलों में पैक आता है वो भोजन। ऐसा भोजन क्या करता है? हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है। लहसुन प्याज भी उत्तेजना पैदा करता है, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह को जागृत करता है, अहंकार को, चिंता भय को जागृत करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, टेंशन वाले हार्मोन निकलने लगते हैं और आपके अंदर आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, शुद्ध सात्विक सैर, अर्थात शुद्ध माना परमात्मा की याद में सातों गुणों का अभ्यास करते, परमात्मा सात गुणों का सागर है, उसकी याद में वो सातों गुण अपने अंदर भरते चलो। ये 45 मिनट सुबह सैर, सुबह लेटरिन जाके स्नान करके फिर सैर करना शुरू करो, या तुम अभी सर्दी है तो मुरली के बाद शुरू करो, सर्दी गर्मी होती है तो मुरली के पहले वॉकिंग कर लो, पर 45 मिनट बिना बात किए हुए बाबा की याद में सैर करो, बातें करते हुए नहीं, बाबा की याद, सातों गुणों का अभ्यास करते हुए। वो 45 मिनट भी आपके योग में काउंट हो जाते हैं। और फिर शाम को आधा घंटा दिन ढलने से पहले, सूर्य अस्त के पहले सैर कर लो, तेज नहीं, शाम को हल्के हल्के सैर करो, शाम सुबह को तेज सैर करो। तेज का मतलब एक मिनट में 110 स्टेप से ज्यादा करो, 5 मिनट वार्म अप करो, 35 मिनट फास्ट करो, 5 मिनट फिर कूलिंग डाउन। जैसे जैसे कार चलाते हैं ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर पे, फिर गाड़ी मेंटेन करो, जब ब्रेक लगाना है फिर वापस सेकंड गियर लगाओ, फिर ब्रेक लगाओ। तो 45 मिनट ऐसे सैर करो। सोने का समय, शुद्ध सात्विक नींद, शुद्ध माना सोने से पहले अपने मन बुद्धि को खाली करो, जो भी आज सोचा था दिन में, मेरे से अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी हुआ, बाबा को लेटर लिखो, सारी बातें उसमें लिख के साइन करके बाबा की याद में बैठ के बाबा को फैक्स कर दो। बाबा का फैक्स नंबर है 000000, मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो कुछ हुआ मल्टीप्लाइड बाय 0। तो बाबा को फैक्स कर दिया और उसके बाद वो लेटर फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, फिर अपना चार्ट भरो और बाबा की गोद में सो जाओ। बाबा की गोद में सोने का अर्थ क्या है? जो हमारा बेड है वो गैरेज है, अपनी बॉडी को वहां पार्क करो। मेरा बेडरूम कहाँ है? सूक्ष्मवतन। और बेड कौन सा है? गोद कौन सी? बाबा बेड है, बाबा की गोद, तो वहां जाके सो जाओ। और फिर शुद्ध सात्विक दवाइयां, दवाई भी बाबा की याद में बहुत प्यार से स्वीकार करो। जो दवाई है वो आपका हिसाब किताब है, वो भी दवाई, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, कोई बीमारी की दवाई भी है जो डॉक्टर बताते हैं, उसको प्यार से खाओ। कई लोग रो के दवाई खाते हैं, ऐसे दवाई रख के फिर रोते हैं पहले, फिर उसके बाद दवाई खाते हैं, वो दवाई कभी नहीं छोड़ पाते, क्योंकि जो प्यार से दवाई खाते हैं उनकी दवाई भी धीरे धीरे छूट जाती है। हमने देखा हार्ट के प्रोग्राम में जो 7,000 रुपए की दवाई खाते थे एक महीने में, 6,000-7,000 की दवाई खाते थे, आज 6 रुपए की दवाई पे महीने में ठीक ठाक है। कई लोग तो दवाई छोड़ भी चुके हैं। तो जो इस तरह से अपने जीवन को चलाते हैं वो सदा स्वस्थ रहते हैं। तो जब हम इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं, सुबह 4 से 5 मेडिटेशन, 20 मिनट आनंद की स्थिति, फिर 8 बजे चुप रहना, फिर मुरली 7 से 8 मुरली पढ़ना, फिर 8 बजे वॉकिंग करना बाबा की याद में, फिर नाश्ता करना, नाश्ता करके 11 बजे फल खा लो। जो भी फल को कभी फल और खाना कभी साथ साथ मत खाओ, फल अलग खाना अलग। अधिकतर हाइटस हर्निया और एसिडिटी की बीमारी कारण यही है कि फल और खाना मिक्स कर देना। फल अलग, फल का समय 11 बजे और शाम को 4 बजे। 1 बजे लंच कर लो, पहले सलाद खा लो, फिर रोटी सब्जी खा लो, फिर 4 बजे फल खा लो, शाम को 7 बजे फिर पहले इसबगोल खा लो, फिर सूप पी लो, सब्जी रोटी खा लो। शाम का खाना सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहिए, सिर्फ सब्जी रोटी। सुबह का सुबह का नाश्ता राजा की तरह, लंच मिडिल क्लास आदमी की तरह, डिनर कंजूस आदमी की तरह। और सोते समय 1 कप दूध पी लो, फिर ब्रश करके, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सोते समय ब्रश करके सो। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके आसपास ये जो एनर्जी है, बाबा से जितनी एनर्जी लेंगे वो सारी बॉडी में जाएगी और बॉडी से निकल के सारे चारों तरफ इकट्ठी होती जाएगी। और जितना ज्यादा याद करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहो, उतना आपके पास ये आपका ऑरा बढ़ता जाएगा। ये ऑरा क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों की एनर्जी आपके आसपास कवच का रूप धारण कर लेती है और आपको सामने वाले के वाइब्रेशन से, सामने वाले के संकल्पों से सबसे बचाती है। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। इवन प्रकृति का असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। अगर भूकंप आता है, अगर साइक्लोन आता है, बाढ़ आती है, तो आपको असर नहीं करेगी, वो ऑरा आपकी रक्षा करेगा और जो आपके आसपास होंगे उनकी भी रक्षा करेगा। और साथ साथ आपके ऑरा के अंदर जो भी व्यक्ति आ जाएगा, आपको इशारे से आपकी बात समझ जाएगा। आपको ज्ञान ज्यादा सुनाना नहीं पड़ेगा, थोड़े से ज्ञान में वो थोड़े इशारे से ही वो समझ जाएगा, हाँ ये आत्मा है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। तो वो आपका थोड़े से वाक्यों में ही उसको तीर लग जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसका ऑरा बड़ा होता है, उसका ऑरा से वो सारे विश्व की मनसा सेवा कर सकता है। अमृत वेला बहुत पावरफुल याद में बैठना, तो उससे अपने आप ऑटोमेटिक मनसा सेवा होती रहती है। तो ये है सदा स्वस्थ रहने का आधार। हमारा मन सदा खुश रहता है, तन सदा स्वस्थ रहता है, आत्मा शक्तिशाली रहती है। ओम शांति। अभी मैं एक भाई को बोलूंगा, एक सत्यनारायण भाई हैं जो हैदराबाद के हैं, आपको अपना अनुभव सुनाएंगे। आप उनका अनुभव सुनिए, वो भी ऐसे दिल वाले हैं, कैसे उन्होंने अपना जीवन बदला, तो आप उनका अनुभव सुनेंगे और फिर उसके बाद क्लास को हम विश्राम देंगे। ओम शांति। अभी आप उनका अनुभव सुनाइए। अभी माताएं अनुभव सुन के जाएंगी। हंस।
ओम शांति। मैं एक आत्मा हूं, मेरा शरीर का नाम सत्यनारायण। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में रहता हूं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के करीब रहता हूं। मैं जो बचपन में बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और मुझे पढ़ाई ज्यादा पढ़ा नहीं मैं, और मैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग IDPL इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी में 30 साल सर्विस किया, 4th क्लास इंप्लाइज था। तब जो है ना, पढ़ना पड़े तो अच्छा जॉब मिलता बोलते बोल के मैं सर्विस करते हुए उस्मानिया मैट्रिक स्टडी किया, लेकिन उसके लिए 7th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं तो 5वीं पास हुआ, तो 7th क्लास सर्टिफिकेट के लिए मैं नाइट स्कूल गया, पैसे कमाना बोले तो पोस्ट बढ़ा रहना ना, इसीलिए तो वो भी मैं पढ़ सका नहीं। फिर बाद में पैसे कमाने के लिए चिटफंड चालू किया, चिटफंड एंड फाइनेंस सर्विस करते हुए मैं चिट्ठियां चलाता था, फाइनेंस करता था, तो पैसे भी जरा पैसे दिखने लगे, तो आदतें भी बहुत खराब आदतें आ गए, शराब पीना, बहुत बैड हैबिट्स आ गए, और शराब के साथ मीट। मैं जो है ना, ये बाबा का बच्चा बनने से पहले मैं 14-15 किस्म के घोष खाया, और जो है ना रोज शराब पीना, कब जो है ना घर में तंग होते थे, घर में कभी कभी लड़ाई होता था घर में, और बाहर भी लड़ाई होता था पैसे के लेन देने के बारे में, और पुलिस केस भी होते थे। और जो है ना, फिर मैं 28 दिसंबर में मुझे फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक आया था। उसके बाद हार्ट अटैक आने के बाद मुझे 2006 जनवरी में मेरे को एंजियोप्लास्टी हुआ, स्टेंट डाले। फिर उसके बाद जो है ना 2004 में फिर बाईपास सर्जरी हुआ, 2004 मार्च में, और फिर जो है ना 2004 मई में फिर एंजियोप्लास्टी हुआ, फिर स्टेंट डाले। फिर भी मैं इसी आदत में 2-3 महीने बंद करता था पीना, फिर चालू होता था पीना। फिर मैं जब भी दो रोज के दो तीन डब्बी सिगरेट पीता था, गोल्ड फ्लैग छोटा। और जो है ना, फिर 2007 में मई दिसंबर में ज्ञान में आया। ज्ञान में आने के बाद मैं एक महीने के अंदर पूरा छोड़ दिया, पूरा शराब पीना, बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दिया। फिर जो है ना, जब पीता था ना, उस समय घर में बच्चों को बोलता था 11 बजे, रात के 11 बजे लाओ बॉटल लाओ बोलता था, सिगरेट लाओ बोलता था। तंग होते थे हमारे परिवार के बीवी बच्चे, ये क्या है। सुबह बोलता था नहीं कल से नहीं पीता बोलता था, फिर शाम में लाइट डालते ही फिर दिल लगता था पीना, फिर जाके पीता था। फिर जो है ना, दीपावली आया, दशहरा आया, शिवरात्रि आया, तो भी उस दिन भी पीता था मैं कंटिन्यू। साल में 360 दिन पीता था। तो जो है ना, मेरे को बाबा का बच्चा बनने के बाद मैं, हमारे घर के पास जो है ना, मेरे घर के लग के एक मंदिर है, मंदिर के पास आपको गीता ज्ञान सुनाएंगे बोल के एक भाई साहब पाम्पलेट बांट रहे थे, बीके भाई। वो पाम्पलेट लेके मैं देखा, मेरे को गीता सुनना बोल तो बहुत पसंद था। अरे मैं बहुत दिन से इसी का इंतजार कर रहा था बोल के मेरा युगल को लेके गया मैं शाम में, इतवार के दिन 25 नवंबर 2007 में। तो मैं मेरा युगल दोनों गया। फिर उस दिन शाम में मैं क्लास अटेंड किया। फिर जो है ना, इसी कल से मंडे से मैं 7 दिन का कोर्स ले लिया। अभी तक मैं एक दिन भी एबसेंट नहीं हुआ मुरली सुनने का, क्लास में जाने को। वैसी चिपक गया माँ बाबा को। और जो है ना, मेरा मिसेस जो है ना, एक महीना तक आया, फिर उसके बाद वो आना बंद कर दिया। अभी मैं जो है ना, मेरा सेंटर में जो है ना, मेरा दीदी क्या बोलता, आप रेगुलर स्टूडेंट है भाई बोलते। और जो है ना, एक मेरा बेटी ओडिशा में रहता था, वहां पे भी मैं गए तो बॉटल लेके जाता था, हमेशा बॉटल लेके जाता था। वहां पे मटन मच्छी बहुत मिलता उधर ओडिशा में। एनटीपीसी में मेरा दामाद नौकरी करता था, वहां जो है ना, मैं जाके पूरा एंजॉय करता था पीने का। हमारा हमारा सिस्टर का बेटे को ही दिए थे हम, बेटी को। तो हमारा भवने साहब भी बहुत पीता था, वो भी, वो उसको कितने बार बोला ज्ञान में आओ बोल के, आया नहीं। तो मेरे साथ जितने भी पीते थे वो लोग सब अब मेरे से दूर हो गए, मैं भी उनसे दूर हो गया, मैं उनके साथ छोड़ दिया बिल्कुल। अभी हमारा सेंटर वहां पे ओडिशा में क्या हुआ, रोज मैं 2 किलोमीटर पैदल जाता था, क्लास वॉकिंग भी हो जाता था, मुरली सुनने भी जाता था। वहां का भी दीदी बोलते आप रेगुलर स्टूडेंट है, कितना अच्छा आते हैं यहाँ पे, डुमा भी बहुत हो जाते, आप तो एबसेंट करते नहीं बोल के। तो ऐसे मैं मुरली सुनने जा रहा था, तो एक भाई कसाई जो है ना, बकरी लेके जा रहा, अरे भाई तुम आ गए क्या, अरे अच्छा अच्छा आइटम देता हूँ शाम में आ जाओ बोला वो। मैं बोला ऐसा इशारा करा, मैं बंद कर दिया ना, इसीलिए उसको बात नहीं करना मुरली से पहले बोल के ऐसा इशारा कर दिया। तो मैं जो है ना, इतना परिवर्तन हो गया। मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ, 3 बजे उठ के फ्रेश होके योग में बैठ जाता हूँ। फिर अभी जो है ना, लौकिक परिवार वाले भी मेरे से खुश है। अभी जो है ना, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब 2007 में बाईपास, फिर 2007 में फिर स्टेंट डालना बोले। तो उस समय मैं ज्ञान में आने के बाद 3 महीने के बाद हैदराबाद में कैट प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में अटेंड किया। जैसा भाई साहब बताए वैसा ही मैं फॉलो हो रूं। अभी जो डॉक्टर मेरे को स्टेंट डालना बोले, अभी वही डॉक्टर बोलता तुम इतना अच्छा कैसा बन गए बोलता। मैं जो कैट प्रोग्राम अटेंड किया उस समय एंजियोग्राफी करा के कैट प्रोग्राम अटेंड किया। फिर जो है ना, 8 महीने के बाद फिर एंजियोग्राफी कराया, फिर तो मेरे ब्लॉकेज पूरा क्लियर है। वो डॉक्टर बोलता तुम इतना अच्छा कैसा बन गए बोलता। मैं बोला ऐसा ऐसा, हम ब्रह्म कुमारी में हमारा डॉक्टर एक है, वो कैट प्रोग्राम अटेंड किया, उनको भी एक शिव संदेश किताब दिया। और जो डॉक्टर बोला जो मैं चाहता था, बहुत अच्छा बन गए बाबा, आप तो बहुत अच्छा बन गए, अभी आपको स्टेंट डालने की जरूरत नहीं बोले, अभी तो मैं बहुत अच्छा हो गया। पहले जो है ना, 1 किलोमीटर चलने में मैं 10 बार रुकता था, अभी 1 किलोमीटर नहीं, 4 किलोमीटर चलता हूँ, रुकने की जरूरत नहीं। अभी बहुत मैं बाबा से शक्ति लेता रहा हूँ। और मुझे 20 साल पहले मेरे को कमर की दर्द था, कमर ऑपरेशन करना बोले थे 20 साल पहले, उस समय मेरा उम्र कम है बोल के मैं ऑपरेशन नहीं करा लिया। 1.5 साल पहले वही डॉक्टर के पास गया, फिर कमर दर्द बहुत हो रहा बोले, तो वो डॉक्टर बताया कि आप तो ना, उस समय मैं बताया आपको ऑपरेशन कर लो बोले, तो आप नहीं कराया, अभी तो आप लाइफ लॉन्ग टैबलेट खाना बोला। तो मैं यही बात भाई साहब को बताया, गुप्ता जी को बताया, तो बोले आप जैसा हार्ट के ब्लॉक खोल लिए ना, उसी तरह आप बैक पेन का भी इस्तेमाल करो, उससे आपका बैक पेन भी कम होता, बोला अभी मैं तब से जब भाई साहब बोले नहीं खाना ये दर्द के गोलियां नहीं खाना बोले तो वो गोली बंद कर दिया, मैं वही बाबा से शक्ति लेता रहा, अभी मेरे को कमर दर्द भी बहुत कम हो गया, मैं अच्छा अभी साइकिल भी चलाता हूँ यहाँ आके, अभी ये शोल्डर भी दर्द था मुझे, ये वैसी बाबा शक्ति लेते रहे ना आपको सब कम होते रहता, बोले अभी मैं उसी तरह मैं 6 महीने के अंदर मैं 13 किलो वजन उतर गया कैट प्रोग्राम अटेंड करके, तो मैं अभी पहले चलने को बहुत तकलीफ होता था मुझे, और जो है हमारे सेंटर का दीदी समझे, मैं जब राजयोगा में गया पहला ये इतना मोटा है ये इसको चलने बराबर आता, ये ठीक ठाक ही नहीं कि हमारे पास बोल के सोचा करते, दीदी बताए मेरे को ऐसा, तो मैं पक्का रेगुलर स्टूडेंट हो गया। और ओडिशा में से भी हम जब हैदराबाद आ रहे तो वो बोलते अरे आप रेगुलर स्टूडेंट जा रहे भाई बोलते थे दीदी, ऐसा हो गया मेरे को जो है ना अभी बाबा से बहुत शक्ति लेते रहता हूँ मैं, अभी लोग सब हमारे परिवार के और रिश्तेदार के लोग क्या बोलते अरे तू हमारे साथ खाता नहीं पीता नहीं, अब तुमसे क्या बोलता, हमारा ओन सिस्टर के घर में खाता नहीं कहीं भी खाता नहीं, सिर्फ एक बेटी के पास गए तो वहां का तू मैं लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाता, 30 दिन के अंदर पूरा छोड़ दिया, बाहर खाने का भी छोड़ दिया, और खास कोई नजदीक रिश्तेदार का लोग है समझो उनके भी शादी में अगर जाना है समझो मैं टिफिन लेके जाता अपना टिफिन खा लेता, बाहर कहीं भी नहीं खाता। ये जो है ना मैं अभी 1 महीना बाकी है 3 साल ज्ञान में आके, 1 महीने के अंदर पूरा छोड़ दिया मैं, वो सब पहले मैं जो है ना ये छोड़ना वो छोड़ना बोल के सिद्ध समाधि योगा क्लास किया, वो एक गुरु को पकड़ा था और दूसरे दूसरे क्लासेस किया, कोई भी मुझसे शराब वगैरह छुड़ा ना सका, बाबा एक ही छुड़ाया मुझको, मुझसे शराब सब बुरे आदत पूरे छोड़ दिया। जब मैं ब्रह्माचारी नहीं था तो उस समय जो जो मेरे को पसंद थे वो पूरे छोड़ दिया मैं अभी तो।
बहुत अच्छे,
ओम शांति।
2 मिनट बाबा को याद करें फिर उठते हैं, 2 मिनट सभी बाबा को याद करें बहुत प्यार से, ऐसे मीठे बाबा को सब बहुत बहुत प्यार से याद करेंगे और फिर आप खाना खाएंगे। चलिए, ऐसा बाबा जो हमारे अंदर हमारे जीवन में इतना परिवर्तन कर दे, हमें कहां से कहां ले जाता है, ऐसे बाबा को तो कभी हमेशा क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सदा निरंतर याद में रहना चाहिए, है ना, और उसकी स्मृति को छाती से लगा के रखना चाहिए, है ना। तो बाबा की मुरली दिन में 10 बार कम से कम रिवाइज करो, अमृत वेला पावरफुल करो, बहुत पावरफुल माने परम धाम में बैठ के करो, और मुरली कम से कम मुरली 7 से 8 पढ़ के फिर 10 बार रिवाइज करो दिन में, और सोने से पहले अपना चार्ट भर के बाबा को याद में बहुत बाबा की गोद में ही सो जाओ, और खान पान एकदम शुद्ध सात्विक करो, सैर जरूर करो, सैर कभी मिस ना करो, हर इंसान के लिए सैर करना आवश्यक है, 10 बजे सो जाना 4 बजे उठ जाना आवश्यक है, अगर कर्म भोग है तो एक दो दवाई खानी पड़ती है, दवाई भी खा लो, दवाई खाने में खुशी से दवाई खाओ, ड्राई फ्रूट समझ के दवाई खा लो, बीमारी चुक तो हो जाएगी, और 2 साल 4 साल 5 साल और चलेगा, उसके बाद अपने घर वापस चलेंगे फिर सुखधाम में आ जाएंगे, वहां तो सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, सदा आनंद में रहेंगे, राज करते रहेंगे। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करें।
खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया, हो ओ बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया।